الحمد لله صلى على رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تین حضرات پچھلے حصے کے ہم گزشتہ اتوار کی گفتگو کو فردر آگے بڑھائیں یہ کچھ سوالات ہیں جن کے جواب کچھ صاحبان کو درکار ہیں کسی صاحب نے قوالی کے بارے میں ایک سوال پوچھا ہے کہ بعض علماء اور صوفیاء حضرات قوالی کے سخت مخالف ہیں اور بعض اس کے حق میں ہیں دونوں میں سے صحیح کیا ہے جیسا کہ اس سوال میں خود ہی لکھا ہے کہ کچھ مکتبہ فکر قوالی کے حق میں ہیں اور کچھ قوالی کے مخالف ہیں در حقیقت ایسے تمام شغل جو انسان کو رب کی یاد سے غافل کر دیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تفریح کی اجازت ہے اسلام میں, تفریح سے منع نہیں کرتا اسلام. آپ آزاد ہیں کوئی بھی ہابی ایڈاپٹ کرنے کے لیے, آپ آزاد ہیں کسی قسم کا کوئی شغل اختیار کرنے کے لیے. رب تعالیٰ نے صرف اس کی ایک براڈ آؤٹ لائن دے دی کہ کوئی بھی ایسا شغل جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ مناسب نہیں, اور کسی ایسی چیز جو کہ اللہ کی یاد دلاتی رہے اس کے ساتھ انسان کا شغف مباح ہے. اسی لیے موسیقی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی موسیقی جو دل پر رقت طاری کر دے اور انسان کو رب کی یاد آنے لگے وہ مباح ہے, اور ایسی موسیقی جو انسان کو رب سے غافل کر دے وہ جائز نہیں ہے. تو یہ فارمولہ قوالی پر بھی لاگو ہوتا ہے, اس کے اطلاق قوالی پر بھی ہے. اگر تو قوالی سن کر انسان رب کی طرف راغب ہوتا ہے, اس کی یاد میں کھوتا ہے, تو وہ جائز ہے. اور اگر قوالی سن کر انسان غیر اللہ کی یاد میں کھونے لگے یا کسی غیر اللہ کی یاد اس کو رب کی یاد سے زیادہ ستانے لگے تو پھر مناسب نہیں ہے. یہ انسان کے اپنے مزاج کی بات ہے. کچھ لوگ فلمی گانے سنتے ہیں, ان گانوں سے بھی وہ مطلب ایسا نکالتے ہیں کہ رب کی یاد آنے لگتی ہے, انہیں تصوف اسی میں ڈھونڈ لیتے ہیں. اور کچھ لوگ قرآن پاک کی قرأت کو بھی میوزک بنا لیتی ہیں. تو یہ انسان کے اپنے اصل میں سوچ پر منحصر ہے. اس لیے قوالی کے بارے میں یہ حتمی رائے دینا کہ جائز ہے یا ناجائز وہ مناسب نہیں ہوگا. معلوم نہیں کوئی شخص اسے کس طرح سے سن رہا ہے. اگلا سوال لینی صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض صوفیہ کرام دوران قوالی بندے کو خدا سے ملا دیتے ہیں اور بعض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک سے ملا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں, یہ مقام عشق ہے یہ گمراہی ہے. یہ معاملہ بڑا باریک ہے. اگر تو ہم یوں سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے محبوب ہیں جو کہ ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, इसी तरह अगर हम ये जाने कि इल्म में रब के बाद अगर कोई यक्ता है इंसानों में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपसे बढ़कर इल्म स्वाय रब के और किसी के पास नहीं। इसके साथ ही साथ अगर हमें ये याद रहे कि इंसान नाकसुल अक्ल है, बाई डिजाइन उसके अंदर खामियां मौजूद हैं, उसका इल्म भी नामुकम्मल है, उसकी अक्ल भी महदूद है, उसकी निगाह भी महदूद है, तो रब ताला तक इंसान अपने इल्म, अपनी अक्ल और अपनी मोहब्बत से इस तरह नहीं पहुंच पाएगा। ये बिल्कुल बात वहीं चली गई जो गुज़श्ता इतवार हम ज़ेर बहस ले आए थे कि मैंने तीन रास्ते अर्ज किए थे अल्लाह ताला तक पहुंचने के, एक विल, दूसरे नॉलेज और तीसरा लव। बात वहीं आ गई है। जब हमें ये मालूम है कि हमारी नजर भी महदूद है, अक्ल भी महदूद है, इल्म भी महदूद है और हम खुद खता के पुतले हैं, तो रब ताला तक अक्ल और इल्म से हम कैसे पहुंच पाएंगे? उसके लिए हमें एक पड़ाव चाहिए होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर हमें 50 मंजिला बिल्डिंग पर चढ़ना हो सीढ़ियों के जरिए तो हम लगातार नहीं चढ़ पाएंगे, रास्ते में हमें कहीं न कहीं ठहर के सांस लेना होगा, तो तभी हम खैरियत से 50वीं मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर रब तक पहुंचना है तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पकड़ना ही होगी। पहले हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में पालना होगी और अपनी निगाह, अपनी तवज्जो और अपने दिल का मरकज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना पड़ेगा। गैर मशरूत मोहब्बत करेंगे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और गैर मशरूत अकीदत रखेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और उसके साथ साथ एक और इजाफी चीज हमें करना होगी, वो ये कि दिल में हमें एहसानमंद महसूस करना पड़ेगा अपने आप को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो हस्ती हैं जिन्होंने हम तक अल्लाह का सच्चा दीन पहुंचाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर एहसान अजीम है। तो जब हम मरकज बना लेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तवज्जो का, अपनी मोहब्बत का, अपनी निगाह का, तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। तो एक बार जब हम उस दायरे में दाखिल हो गए जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार करने वाले हैं, उस दायरे में पहुंचे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रब से मिला जरूर देंगे इंशाल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम उस मकाम पर लाते हैं और वहां से हमें रब तक पहुंचा दिया जाता है, और जब हम रब का प्यार देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो दूरी का एहसास खत्म होता है, वो यकजाई वहां आती है। ये दूई और यकजाई लास्ट संडे भी हमने डिस्कस की थी, ये मकाम इश्क है। तो जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करते हैं तो वहां हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा फिर कुछ दिखाई नहीं देता, तो यूं हम कहने लगते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब एक ही हैं। ये महावरतन कहते हैं, असलन उसका मायने वो नहीं होता, ये तमसीलन बयान किया जाता है ताकि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मशरूत प्यार करने लगें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क में मुब्तला हो जाएं तो ला महाला रब ताला तक चले जाएंगे। तो कवाली के अंदर अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब से कोई मिलाता है, इसके लिए किसी नशिस्त में शायद मैंने काफी देर पहले एक जिक्र किया था कि एक मर्तबा मैं अपने मुर्शिद साहब के पास बैठा था, तन्हा थे हम दोनों, कोई तीसरा मौजूद नहीं था। तो मेरे मुर्शिद साहब ने एक बात कही, वो ऐसा दौर था बावजूद मुर्शिद साहब के पास बैठने की इस राह को पकड़ने के, मेरे जहन पर मगरबी तालीम का असर बहुत ज्यादा था। तो जब मुर्शिद साहब ने वो जुमला कहा तो मैं कांप गया कि क्या शिर्क बोल दिया, लेकिन मैं उस पर कोई हफ्ता दस दिन गौर करता रहा। हमारे अदब के अपने मुर्शिद साहब से तो कुछ अर्ज नहीं किया, लेकिन खुद मैं दिल में उस पर गौर व फिक्र करता रहा कि ये जुमला क्या है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर हकीकत खुली कि मुर्शिद साहब ने तो ठीक कहा था, मैं ही उसे गलत समझा था। कम इल्मी की वजह से मैं असल बात को गिरफ्त में ले नहीं सका। वो मुर्शिद साहब फरमाने लगे बैठे बैठे कि मियां, मुर्शिद को तो रब का दर्जा देना पड़ता है। और इसी जगह बैठे हुए एक दिन मुर्शिद साहब ने फरमाया कि मैं तो कहता हूं कि अली ही रब है। मैं फिर बिदक गया कि ही का कह दिया इन्होंने, शर्क कर दिया। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उकदे खुले और वाजे हो गई बात मुझ पर। वो किस्सा वही था कि जब मुर्शिद साहब फरमा रहे थे कि मुर्शिद को रब का दर्जा देना पड़ता है, तो खुदा न खास्ता अल्लाह माफ फरमाए, ये मकसद नहीं था मुर्शिद साहब को जो मैं समझा। वो तमसीलन कह रहे थे कि मुर्शिद का एहतराम इस अंदाज में करना पड़ता है और मुर्शिद की बात इस तरह माननी पड़ती है जैसे हम कुरान में लिखी बात मानते हैं। जैसे यहीं बैठे हुए एक बार मैंने जिक्र किया था कि जब आप किसी के हाथ पर बैत कर लेते हैं, उसे मुर्शिद मान लेते हैं, तो इंसान की डिक्शनरी से पांच काफ, छोटे काफ, वो निकल जाती है। उर्दू का अल्फाबेट है काफ, काफ नहीं काफ। क्यों, कब, कैसे, किस तरह, ये काफ निकल जाते हैं। मुर्शिद से ये सवाल नहीं पूछे जाते। वो यूं मुर्शिद साहब ने कहा, मैंने तो ये एक्सप्लेन कर दी बात, मुर्शिद साहब बड़े आदमी थे, मैं जो बातें सौ जुमलों में कहता हूं आप एक जुमले में फरमाते थे। वो और बात है कि अगर सामने मुझ जैसा बेइल्म शख्स बैठा है तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता जब तक कि 15 दिन उसके ऊपर गौर व फिक्र के लगा ना ले, फिर कहीं बात समझ में आती थी कि कहा क्या था मुर्शिद साहब ने। तो जब हम अपने मुर्शिद से कोई सवाल नहीं पूछते, हत्ता कि कुछ सोचते ही नहीं कि मुर्शिद साहब ने कहा क्या और इसकी तामील में तो मेरी जान चली जाएगी, मुझे नुकसान हो जाएगा, तो वो मकाम हमने मुर्शिद को फिर वही दे दिया। तो ये तमसीलन उन्होंने मिसाल के तौर पर बात करते हुए कही। इसी तरह जब आपने फरमाया कि मैं तो कहता हूं कि रब भी अली है, तो उससे भी मुराद ये थी, दर हकीकत वो तरीकत का और तसव्वुफ का एक वास्ता, एक जीना, उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। जैसे मैंने कहा कि हमें रब की मोहब्बत हासिल करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर मशरूत मोहब्बत करना होगी, बल्कि शायद गैर मशरूत मोहब्बत काफी न हो, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह का इश्क करना होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी जात से, अपनी जान से, अपने माल से, अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज हो जाएं। यह शरीयत का है रास्ता। तरीकत में, तसव्वुफ में एक जीना और बढ़ जाता है इसमें, वो ये है कि हमें रब तक पहुंचने के लिए हजरत अली करम अल्लाह वजहो के साथ ये इश्क पालना होगा। तो वहां से हम पहुंचा दिए जाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज पर। इसी सिलसिले में वो मशहूर हदीस है कि मैं इल्म का शहर हूं और अली इल्म का दरवाजा, तो दरवाजे में दाखिल हुए बगैर हम शहर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मेरी इस गुफ्तगू से शायद बहुत से दोस्तों को ये गुमान हो कि मेरा ताल्लुक अहले तशी से है। ऐसा नहीं, मैं अहले सुन्नत में से हूं और जनाब हजरत इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह साहब का पैरोकार हूं, लेकिन हकीकत यह है कि जो कुछ मैंने जाना है, जब तक के इन हस्तियों को हम नहीं पकड़ते, जब तक के हम इन हस्तियों की दहलीज को मजबूती से नहीं पकड़ लेते, जब तक पहुंचना दुश्वार है। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, जनाब हजरत अली करम अल्लाह वजहो, इनसे प्यार करना ही पड़ेगा, और इनसे प्यार भी इस दर्जे का कि वो इश्क हो जाए। तो यहां से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक इंसान पहुंचा दिया जाता है, दर्जा बदर्जा ऊपर जाता है इंसान। तो ये तसव्वुफ में एक जीना और है जिसको मुर्शिद साहब ने उन लफ्जों में बयान कर दिया कि हजरत अली करम अल्लाह वजहो के फरमुदात, आपकी तालीमात को ब्लाइंडली फॉलो कर लो। ये मकसद ये था, हजरत अली करम अल्लाह वजहो की सुन्नत को ब्लाइंडली फॉलो कर लो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज तक जा पहुंचोगे, और जब उस दहलीज को मजबूती से पकड़ लिया और उसी दहलीज के गुलाम होके रह गए तो रब की दहलीज तक पहुंचा दिए जाओगे। तो ये बात बहुत दूर चली गई, वो सवाल कुछ ऐसा ही था। तो ये मकाम इश्क का है, लेकिन ये इश्क जनून न बनने पाए। जनून में होश आवाज खो देता है इंसान, और अगर इश्क जनून में दाखिल हो गया तो कमतर दर्जे में चला गया। जब तक इश्क इश्क रहता है, होश आवाज कायम रहती हैं, उस वक्त तक इंसान तलवार की धार पर बड़े इत्मीनान से चलता रहता है, लेकिन जहां जनून में दाखिल हुआ वहां फिर इंसान का जहन उसके दिल से कंट्रोल खो देता है। इसीलिए तसव्वुफ में जो दो सिन्फे हैं, सालिक और मजजूब, सालिक को मजजूब पर एज हासिल है कि सालिक साहिब अक्ल और साहिब होश व हवास होता है। मजजूब रब के इश्क में जनून में दाखिल हो गया होता है, जहां उसकी अक्ल और उसका जहन उसका साथ छोड़ गए हैं। वहां हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ दिल की है, अक्ल बहुत दूर छोड़ आता है। वो सालिक को फौकियत हासिल है मजजूब पर। मकाम इश्क है, मकाम जनून नहीं है, ना वो मकाम गमराही है। इसमें एहतियात यही हमें करना होगी कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी अंधाधुंध करना होगी, लेकिन ये जानते हुए कि रब रब है और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम तर मकाम के बावजूद अल्लाह के बाद नंबर एक पर आते हैं। अल्लाह के बाद इसी सवाल का दूसरा हिस्सा यह है कि और बाद सूफी हजरात दौरान गुफ्तगू भी ऐसी बात कह देती हैं। असल में सूफी अकराम पर औलिया अकराम पर मुख्तलिफ कैफियात वारिद होती रहती हैं। सालिक भी हालत जज्ब में चला जाता है लेकिन वो मोमेंट्री कैफियत होती है, लम्हाती कैफियत होती है। कैफियत आई और चली गई, जिस तरह साहिब जनून पर मुल्की कानून का तलाक नहीं होता कि अगर किसी ऐसे साहब के हाथों कत्ल हो जाए जो अपने होश और हवास खो बैठे हैं तो दुनिया की कोई अदालत उन्हें उस कत्ल पर सजा नहीं देती बल्कि जहनी माजूरों के अस्पताल में उन्हें भिजवाने का हुक्म जारी हो जाता है। इसी तरह साहिब जनून पर शरीयत के कवानीन का इत्तलाक नहीं होता। तो जब सालक अगर कभी हालत जज्ब में चला जाए तो वह मंजू नाना बातें करता है, फिर उसका कंट्रोल नहीं होता ना अपने जहन पर ना अपनी जुबान पर, तो वह ऐसी बातें कह देता है। तो वो इश्क में इतना डूबा कि वो यकजाई के मकाम से उसने गुफ्तगू कर दी कि तू कौन और मैं कौन, एक ही तो हैं। ये जनून का मकाम है। लेकिन वो बात सिर्फ हालत जज्ब में ऐसी कहेगा। इसी तरह बाज़ुकात इंसान पर, वली अल्लाह पर या सूफी पर हालत सुकर तारी हो जाती है। सालिक तमाम तर कोशिश करते हैं कि वह हालत सुकर में जाने न पाए लेकिन अगर कभी चले जाएं तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि उस लम्हे उनके सामने से दूर हो जाए। मालूम नहीं क्या बात जुबान से निकाल देंगे। इसी तरह मजजूब को नहीं छेड़ना चाहिए कि मालूम नहीं वो जुबान से क्या बात निकाल दे। साहिब इल्म लोग जब किसी मजजूब को मिलते हैं तो कुछ मजजूब बावजूद साहिब जनून होने के खासे होशियार होते हैं कि वो सालिक से दुआ करने को कह देते हैं कि मेरे लिए दुआ करो। और जहां किसी सालिक ने किसी मजदूर के लिए दुआ की वो खाली हो गया। तो ये शरारत भी कर जाते हैं बात का। तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब कोई मजदूर साहिब इल्म से दुआ के लिए कहे तो उसका आसान तरीन तोड़ ये है कि पलट के उससे कह दिया जाए कि मैं क्यों दुआ करूं, तुम करो मेरे लिए दुआ। भाग जाएगा, कभी दुआ नहीं करेगा। तो वो हालत जज्ब में कही हुई बात पर कवानीन, खा वो मुल्की हो, लॉ ऑफ द लैंड हो या शरीयत लॉ हो, वो लागू नहीं होता क्योंकि वो अपने होश हवास में नहीं है। तो उस वक्त अगर किसी ने उस इश्क के जनून में ये बात कह दी कि तू कौन और मैं कौन, एक ही तो हैं, तो काबिल गिरफ्त नहीं आता। वो हालत जज्ब में कही जाती हैं ये बातें, वरना सालिक ऐसी जसारत नहीं करता कभी। वो तो रब से मोहब्बत करता है और जिस तरह लास्ट संडे मैंने अर्ज किया था कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे वो खौफजदा नहीं होता लेकिन उसकी नाराजगी से डरता है कि मेरा महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए, और इसी एक डर के तहत उसकी हर बात, हर ख्वाहिश, हर उसकी फरमाइश पूरी करता जाता है बंदा। यूं तमाम साहिब इल्म ये सबक देते हैं कि रब से प्यार पालो, उसे खौफ ना पालो, उससे खौफ ज्यादा ना हो, क्योंकि खौफ जब पालेंगे आप तो उससे दूर भागेंगे, जब प्यार उससे पालेंगे तो उसके करीब जाने की ख्वाहिश बहुत शदीद होगी और उस प्यार के मारे आप हर वक्त इसी डर में मुब्तला होंगे कि मेरी किसी हरकत से मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए। महबूब की नाराजगी से इंसान डरता है। ये किसी साहब ने असल में ये सवाल भेजा और मेरा अपना ख्याल ये है कि वो पुरसरात लिखना चाहते थे, जिसको रवानी में पुरसरात लिख गए हैं। ये गालिबन पुरसरात है, और अगर ये उन्होंने सोच समझ के पुरसरात लिखा है तो ये टर्म मेरे इल्म में अभी तक आई नहीं, इसलिए इस पर मैं कोई बात कर नहीं पाऊंगा आपसे। लेकिन अगर ये पुरसरात है तो मेरा इसके बारे में ख्याल ये है कि दर हकीकत ये पुरसरात एक इमेजिनरी पुल है। इससे मुराद ये है कि इंसान का जो एमाल का फैसला होगा वो इस तरह से होगा जैसे तलवार की धार पर चल रहा है इंसान, और ऐसा कड़ा वक्त होगा कि बड़े से बड़ा नेक इंसान, बड़े से बड़ा वली अल्लाह कांप रहा होगा कि मैं इस पुल सरात से गुजरूं कैसे। ये महावरतन है, इमेजिनरी चीज है, इसका मेरे इल्म की हद तक कोई फिजिकल वजूद नहीं है। दूसरा सवाल इन्होंने कहा कि जब रब फैसला कर देगा तो फिर भी पुरसरात पर से गुजरना पड़ेगा। फैसला जब हो गया किसी का तो फिर पुरसरात से गुजरने का कोई सवाल ही नहीं है। जब रब ने यह फैसला कर दिया कि तुम जन्नत में जाओगे और तुम दूसरी तरफ, तो फिर तो उसको कोई चीज रोक नहीं सकती कि रब का फैसला है। तो रब का फैसला हो जाने के बाद तो कहीं कोई रुकावट नहीं है। तीसरा सवाल इन्होंने किया कि सिर्फ कुर्बानी करने वाले या कुर्बानी का जानवर ही पुरसरात से गुजरेगा, बाकी लोगों का क्या होगा। साहब, ये कुर्बानी के जानवरों का पुरसरात से गुजरना कि वो अपनी पुश्त पर कुर्बानी करने वाले को बिठाकर बड़े इत्मीनान से पुरसरात पर से गुजर जाएगा, ये वही तमसीली बातें हैं। से मुराद ये है कि जो इंसान अल्लाह की राह में कुर्बानी करता है खालिस्तन सुन्नत इब्राहिमी पूरी करने के लिए, तो उसका अजर इतना है कि वो इस कुर्बानी के सदके बहुत से गुनाहों से माफ कर दिया जाएगा, हिसाब किताब में उसके लिए आसानी हो जाएगी। मुराद वो ये है उससे। एक सवाल ये है कि इज देर एनी फ्रॉम औलिया इकराम हु गिव्स ड्यूटी ऑन रोजाए मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औलिया इकराम में भी असल में बहुत से कैटेगरीज हैं और इनकी ड्यूटीज लगती रहती हैं, ड्यूटीज से रिमूव होते रहती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी ये लोग हाजिर रहती हैं और वहां मौजूद होते हैं हर वक्त ये लोग। इस मामले में शायद इससे ज्यादा मैं कुछ बयान ना कर सकूं आपसे, लेकिन इतना मैं आपसे अर्ज कर देता हूं कि बहुत से औलिया किराम वहां मौजूद होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हर वक्त। गुज़श्ता इतवार उन तीन तरीकों पर गुफ्तगू हो रही थी और लव को तो हमने एट लेंथ डिस्कस किया था, लेकिन इसके दूसरे दो रास्ते जो हैं विल एंड नॉलेज वो डिस्कस नहीं कर पाए थे हम। विल, जैसे मैंने लास्ट संडे भी अर्ज किया था कि उससे मुराद यही है कि कॉन्शियसनेस, जो जिस तरह ज़हन के तीन, माइंड के तीन लेवल बताए थे, अर्ज किए थे आपकी खिदमत में, अगरचे ज्यादा एम्फेसिस हमारा लास्ट संडे अल्लाह से मोहब्बत पर था, लेकिन ये बाकी दोनों रास्ते भी बेमायने नहीं है। अगरचे हमने उसके बारे में यही अर्ज किया था कि इंसान अपनी फितरी खामियों और कमजोरियों की वजह से बाकी दो रास्तों से मुश्किल से ही पहुंचता है, उसके अंदर खतरात बहुत हैं, कहीं भी पांव फिसल सकता है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, इंटेग्रेटेड हैं। ये एक पॉइंट ऐसा आता है कि ये तीनों यकजा करके फॉलो करना पड़ते हैं, या यूं कहिए कि एक जंक्चर पर जाके ये तीनों रास्ते मिल जाते हैं और उसके बाद एक रास्ता हो जाते हैं। ये याद रखिए कि मोहब्बत, जिसके ऊपर इतना हमारा उस दिन एम्फेसिस था, एक मकाम पर ये मोहब्बत बगैर नॉलेज के अंधी होती है, और नॉलेज बगैर मोहब्बत के ड्राई होता है, बेरंग होता है, जिसको हम कहते हैं कि फला मजमून तो बहुत खुश्क था क्लासरूम में, जब हम स्टूडेंट लाइफ में जब हम पढ़ रहे होते हैं कि वो सब्जेक्ट तो बड़ा ड्राई है, बहुत खुश्क है, तो ड्राई उन मायनों में है, बेरंग उन्हीं मायनों में मैंने इस्तेमाल किया। इल्म के अंदर रंग आमेजी के लिए, उसे तरोताजा बनाने के लिए, उसको एट्रैक्टिव बनाने के लिए मोहब्बत का होना बड़ा जरूरी है। बहुत सी ऐसी मिसालें हमारे यहां हैं कि इल्म में मोहब्बत शामिल नहीं हुई रब ताला की, तो वो आलिम तो हो गए लेकिन वली अल्लाह नहीं बन पाए, अल्लाह के दोस्त नहीं बन पाए। इसी तरह औलिया किराम जो मोहब्बत के रास्ते रब तक पहुंचे, वो एक मकाम से आगे नहीं जा पाए, ठप हो गए, बड़ी अर्ली स्टेज पर आके उनका रास्ता ब्लॉक हो जाता कि वो ब्लाइंड है बंदा। और इल्म बगैर कॉन्शियसनेस के आता नहीं। अगर इंसान के पास इल्म हासिल नहीं होता इंसान को, तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि वो इंसान कॉन्शियसनेस के समुन्दर के अंदर नहीं उतरा है, बल्कि कॉन्शियसनेस के समुन्दर के किनारे पर बैठा है। तो जब तक के कोई शख्स कॉन्शियसनेस के समुन्दर में उतर नहीं जाता, गोता नहीं लगाता, उसको इल्म हासिल नहीं। और कॉन्शियसनेस क्या है? खुद को पहचानना है। इसीलिए वो कहा जाता है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने रब को पहचान लिया। वो यही बात है असल में, कि जब तक के इंसान अपने आप को पहचानेगा नहीं, उसे इल्म हासिल नहीं होता। तो यूं ये तीनों एक दूसरे के साथ वाबस्ता हो जाते हैं, कॉन्शियस माइंड, नॉलेज और मोहब्बत। इस कॉन्शियस माइंड को शुरू में मैंने विल का नाम दिया था, विल मोहित है इन चीजों पर। तो पहले इंसान को यह जानना होगा कि मैं क्यों पैदा किया गया, मैं कौन हूं, मेरी पैदाइश का मकसद क्या था, फिर कहीं आगे चलेगा, एक डायरेक्शन उसे मिल जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा उसको। तो ये कॉन्शियसनेस लेवल लाना पड़ेगा हमें, उसके बाद इल्म अता होगा और उसके साथ ही मोहब्बत अता होगी। इसलिए रब ताला के बारे में एक बात कही जाती है कि जो जो इंसान को रब ताला की कुदरत का अदराक होता जाता है तो उसके अंदर खुदा की बड़ाई का एहसास बढ़ता है, और जो जो खुदा की बड़ाई का एहसास बढ़ता है, रब ताला का खौफ, उसके बड़े होने का खौफ दिल पर तारी होता है, और इंसान में मोहब्बत पैदा होने लगती है अपने रब के लिए कि उसे अदराक हो रहा है अपने इल्म के जरिए से कि मेरा रब मुझे किस तरह पालता है और इतने बड़े ज़र्फ़ का मालिक है कि वो मेरी कोताहियों को नहीं देखता, मेरी नाफरमानियों को नहीं देखता, मेरे गुनाहों को नहीं देख रहा। वो तो ये भी नहीं देख रहा कि मैं उसे मानता हूं या नहीं मानता, कहीं मैं उसका मुनकिर तो नहीं। वो तो ये भी नहीं देखता कि कहीं मैं उसके साथ किसी को शरीक तो नहीं ठहरा रहा, और इसकी भी वो फिक्र नहीं करता मुझे देता हुआ कि मैं उसका कितना नेक बंदा हूं। वो सबको देता है, उसका ज़र्फ इतना बड़ा है, वो इन चीजों से बहुत ऊपर है कि जहां वो ये देखे कि अच्छा इसने मेरे वजूद का इनकार किया, इसका रिस्क बंद कर दो, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो जूं जूं इस पर इंसान गहराई में देखने लगता है, इस चीज को जानने लगता है, इस चीज पर गौर करता है और उस पर उकदे खुलने लगते हैं, तो रब ताला की बड़ाई और उसकी अजमत का एहसास दिल में पैदा होने लगता है। इसीलिए औलिया अकराम रब से बहुत ज्यादा डरते हैं। तो ये कॉन्शियसनेस लेवल जब बढ़ेगा, हमारे अंदर कॉन्शियसनेस पैदा होती है, तो हमें इल्म हासिल होने लगता है, और उसी इल्म के जरिए मोहब्बत भी पैदा होती है, और जब ये कंबाइन हो जाती हैं चीजें, तो हमें रब तक पहुंचने के रास्ते मिलने लगते हैं, रब से मिलने के रास्ते हमें हासिल होने लगते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट संडे इस मौजू पे फिर बात करेंगे, और बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती नेक्स्ट संडे आपसे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।